कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री बरसानो धाम राधे जय जय श्याम सब लोग बोलिए हरि बोल जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री बरसानो धाम सबको सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री बरसानो धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री बरसानो धाम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे किशोरी दया करो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा ताई गौर प्रेमानंदे श्री श्री लाडली लाल की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय श्री बरसाना धाम की जय श्री वृंदावन धाम की जय यमुना मई की जय श्री गिरी गोवर्धन की जय 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 श्री राधे श्याम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सो फाइनली मैं पूछ रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग चालू दिख रहा है आपको? ओके,
यस प्रभुजी,
वेरी गुड, ठीक है। तो राधा रानी को बरसाने में वंदन करते हुए, यमुना जी को, गिरी गोवर्धन को, वृंदावन धाम को वंदन करते हुए, आज की हम अपनी बची हुई बरसाने की परिक्रमा आरंभ करते हैं। अभी यहाँ पर बहुत धुआंधार बारिश हो रही है, बहुत धुआंधार, कुछ ही समय पर बाढ़ आने वाली है। श्री राधे श्याम। तो पर्वत की कल की यात्रा समाप्त करके अभी हम जमीन पर आ गए हैं और अभी पृथ्वी तल पर बहुत ही सुंदर स्थान, वो है पीली पोखर। इसको वैसे प्रिया कुंड कहते हैं, ये वृषभानु महाराज का बहुत विशेष कुंड है, राधा रानी इसमें स्नान करती है। कल मैंने आपको बताया था कि गहवर कुंड में, राधा सरोवर में, दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को वरदान दिया था। कौन से वरदान दिए थे? तीन वरदान दिए थे। आपके हाथ का भोजन जो भी मतलब जो बनेगा वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट होगा, और जो खाएगा वो हमेशा रोग से मुक्त रहेगा, और जो खाएगा जो ग्रहण करेगा वो हमेशा विजयी रहेगा। तो ये बात फैल गई, नंदगांव तक फैल गई, यशोदा मैया के कान में आ गई। तो यशोदा मैया जो है वो एक दिन किसी उत्सव का बहाना करके बरसाने आती है, और उस उत्सव में राधा रानी बहुत सुंदर व्यंजन बना रही है, कई प्रकार के व्यंजन, कई प्रकार के चूल्हों पर कई सैकड़ों सखियों को लेकर एक साथ में उसको नियंत्रित कर रही है बहुत कुशलता से। फिर वो कीर्ति मैया से पूछती है कि मैं आपकी कन्या को मेरे यहाँ पर ले जाकर मेरे कान्हा के लिए भोजन बनाना चाहती हूँ रोज। तो इन्होंने तुरंत उसको हाँ कर ली, तुरंत हाँ कर दी, और वहाँ से फिर रोज आना जाना शुरू हो गया। रोज का आना जाना, नंदगांव से बरसाना, बरसाना से नंदगांव, बरसाने से नंदगांव, नंदगांव से बरसाना। राधा रानी के आने के बाद में, जैसे मैंने आपको नंदगांव में दिखाया, पावन सरोवर के यशोदा घाट पर यशोदा मई ने राधा रानी के लिए एक कुआं बनाया मीठे पानी का, जिससे वो रसोई बना सके, और एक राधा बाग बनाई जिससे रसोई बनाकर कृष्ण भगवान को खिलाने के पश्चात राधा रानी भोजन करने के बाद आराम कर सके। और वृषभानु महाराज ने पावन सरोवर किनारे एक महल बनाया जिसमें राधा रानी अपने आठों सखियों के साथ विराजमान रहे, जब चाहे कृष्ण को मिले। ऐसा सुंदर आयोजन रहा, राधा रानी की पूरी व्यवस्था की गई, राधा रानी बहुत सुंदर रोज भोजन बनाने लगी, और कृष्ण भगवान, बलराम जी सब भोजन करते थे। जब राधा रानी खिड़की से देखती थी तो ऐसा मुंह टेढ़ा करती थी, क्या बनाया है, तू ही खा ले भैया, तो मैं तो खाना पाऊँ आको, तू ही खा ले आको, लेकिन बड़ा आनंद लेते थे। राधा रानी को चिढ़ाने के लिए राधा रानी की नज़र पड़ते ही टेढ़ा कर देते मुंह, इतना भद्दा भोजन कभी खाया नहीं हमने। अभी रोज का आना जाना, रोज की वो सुशीलता, वो शालीनता, वो कुलीनता, वो स्वाद, वो प्रेम, रोज मैया देख रही है। तो एक दिन रहा नहीं गया तो मैया ने क्या किया, राधा रानी को गले लगाया बहुत प्रेम से, इतना सुंदर आलिंगन दिया प्रेम से कि राधा रानी भाव विभोर हो गई, और राधा रानी ने आंसू बहाए, मैया ने भी आंसू बहाए, बहुत देर तक आलिंगन में प्रेम से। आप सोच सकते हैं वात्सल्य मूर्ति, हाँ, ज्येष्ठ वात्सल्य मूर्ति यशोदा माई जब प्रेम से राधा रानी को गले लगा रही है तो कितना प्रेम उसमें से उमड़ आया होगा। तो इस प्रेम से क्या कहते हैं उसको, भाव में जाती है वो, बहुत ज्यादा भाव अतिरेक कह सकते हैं उसको, अति आनंद कह सकते हैं, अष्ट विकार कह सकते हैं। ऐसे भाव विभोर होकर यशोदामयी ने हल्दी लगा दी राधा रानी के हाथ को, तभी एकदम मतलब एक प्रकार से वो होश में नहीं थी, दिव्य भाव में थी। उसका अर्थ क्या होता है, उसका क्या परिणाम होगा, क्या सोचेंगे लोग, क्या सोचेंगे कीर्ति माता और वृषभानु महाराज, ऐसा कुछ विचार नहीं किया। बस लगा कि ये कन्या भी यहीं रहने चाहिए, रोज का आना जाना कितने कष्ट की बात है। तो राधा रानी भी जब हाथ को हल्दी लगाई गई तो बड़ी खुश हो गई, बड़ा आनंद हुआ, बहुत दिनों की इच्छा पूरी हो रही है। ललिता विशाखा भी खुश हो गई, और फिर सांझा का समय आया, जाने लगे, वो मानो उस दिन तो हवा में से उड़ के जा रहे हैं, जमीन पर नहीं चल रहे, इतना आनंद हो रहा है ना। आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, बोलते ना हम लोग, मतलब क्या, जब बहुत खुशी होती है ना तो हमारे पांव जमीन पर नहीं गिरते, आकाश में उड़ते जाते हैं। तो मैंने ये उड़ते उड़ते ही गए बरसाना, लेकिन जब बरसाना पहुंचे ना तो इनका फ्लाइट लैंड हो गया जमीन पर, तब होश में आ गए। अरे मैया बाबा से नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा, लड़की गई थी किसी काम के लिए, सगाई करके लौट के आ गई। ये थोड़ी बरसाने के रिवाज है हमारे, ये थोड़ी शिष्टाचार बरसाने का है, ऐसा नहीं चलता है। अभी क्या जवाब देंगे मैया को, रसोई बनाने के लिए गए थे और सगाई करके लौट के आए। तो फिर जब भी समस्या होती तो ललिता जी हमारी आगे आती, तो ललिता जी के पास ये समस्या प्रस्तुत की गई। और ये कहाँ पर बातचीत हो रही है समस्या वाली, ये जो कुंड आपके सामने है यहाँ पर हो रही है, ये बरसाने का एक तरह से प्रवेश क्षेत्र है, यहाँ से बरसाना शुरू होता है। तो यहाँ पर खड़े होकर बातचीत चल रही, तो ललिता जी कहते कोई बात नहीं, चिंता मत करना, इसमें हाथ धो लेना, हम भी आपको मदद करेंगे अच्छे धोने के लिए, और जब हाथ धो के स्वच्छ हो जाएंगे हम किसी को नहीं बताएंगे, खाली हमको पता है ना, चुपचाप चले जाएंगे घर पे सो जाएंगे बस खत्म। तो अभी देखिए मैं आपको एक चित्रपट दिखाता हूँ, राधा रानी हाथ धो रही है, और धो रही है हाथ, ऐसे धो रही है धो रही है, सोच रही है कि ये सगाई का रूपांतर विवाह में करूं कि ऐसे ही रहूं, स्वतंत्र रहूं, रोज का आना जाना अपना बना रहे, अपना भी खुद का एक निजी स्वतंत्र बना रहे, या अभी ये सगाई को आगे बढ़ा के विवाह कर लूं। इस दुविधा में हाथ धो रही है, बहुत देर तक धो रही है, बहुत देर तक धो रही है, बहुत देर तक धो रही है। बाद में सखियों ने याद दिलाया, अरे भाई हाथ धो के हो गए चलो अभी, तो फिर होश में आ गई। बहुत गहरे विचार में थी वो, इसका परिणाम क्या होगा, विवाह में होगा, विवाह होगा तो मैं बंद जाऊंगी उस परिवार में, वहीं पर रहूंगी, तो रोज का छुप छुप के मिलना, इशारे करना सब बंद हो जाएगा, तो क्या अच्छा है मेरे लिए विवाह करके रोज का विरह बंद करके साथ में रहे श्याम सुंदर जी के, कि अपना अपना स्पेस बनाए रखें। तो फिर वो ध्यान भंग हो गया और वो सब चले गए घर पे। अगले दिन सारे बिजवा से आए इस कुंड पे अपने रोज काम करने के लिए, तो क्या देखते हैं, पूरा पूरा कुंड जो है वो पीला हो गया है, सुनहरा पीला रंग चमकता हुआ। तो हमारे गुरुदेव ने हमको बताया था एक बार, जब हृदय में प्रेम होता है ना, तो जिसके पर प्रेम होता है उसके हृदय की बात हमें पता चलती है, उसका दर्द पता चलता है, उसका जो भी हकीकत जो है उसका ये मन में भावना होती है। तो सब लोग राधा रानी पर प्रेम करते हैं, श्याम सुंदर पर प्रेम करते हैं, सबकी इच्छा है कि राधा श्याम सुंदर का विवाह हो जाए, जल्दी सगाई हो जाए इनका, ये सबका स्वप्न था, केवल राधा रानी का और ऋषभानु महाराज का और किसी का नहीं, सबका सबका, हर सखी का, हर ब्रजवासी का ये स्वप्न था कि इन दोनों का विवाह हो जाए। तो आए और देखा कि पता है उनको रोज जाती वहां पर, हाँ रोज जाती होगी, और जाते समय एक दिन, फिर एक दिन बहुत दिनों के बाद में यशोदा माई के भाव बहुत ज्यादा तेज हो गए होंगे, भाव भाव विभोर हो गई होगी, गले लगाया होगा, आंसू बहाए होंगे, हाँ हल्दी लगा दी होगी, फिर वहां से लौटते आए होंगे, फिर यहाँ पर आके संकोच हो गया होगा, फिर कैसे मैया को बताई सोचकर हाथ धो दिया होगा, हाँ ऐसे ना करे करके एक एक कड़ी जोड़कर एक कहानी बना दी, और वो कहानी को सच बना दी, और बोले अरे सगाई हो गई सगाई हो गई। तो सब लोग चले गए, ये कुंड में से काम करने आए थे, काम छोड़ के महल में चले गए, अरे ब्रिशभानु महाराज, अरे कीर्ति मैया, हमने सुना है राधा रानी की सगाई हो गई, अभी इनको कुछ पता नहीं है, आमतौर पे कैसे होता है, जब वो होता है लव अफेयर, तो दुनिया को पता होता है लेकिन माता पिता को पता नहीं होता है। एवरीबडी नोज बट मदर फादर डोंट नो, नोबडी टेल्स देम, नोबडी टेल्स देम। तो सबको पता हो गया, मतलब ऐसे मन में हो गया सगाई हो गई इनकी, लेकिन मैया बाबा को कुछ पता नहीं है। तो जब लोग चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं तो बाबा मैया क्या करते हैं, राधा रानी की ओर देखते हैं, क्योंकि तो उसको ही पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो राधा रानी क्या करती है, सर झुकाती है, मौनम सर्वार्थ साधनम। हाँ, जब किसी बात को आपको प्रश्न पूछा जाता है और आप मौन रखते हो तो मतलब आपकी सम्मति है उसके लिए। तो जब सर झुकाती है तो समझ जाते हैं कि भाई हो गया ऐसे ही, तभी ऐसा उम्मीद है कि डांट पड़ेगी, बहुत सारा बॉम्ब स्फोट हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, आनंद ही आनंद हो गया। मैया बाबा बड़े खुश हो गए, बड़े बहुत दिन की बात थी, हमको भी प्रश्न था मन में कि कैसे बात करें। हाँ, हमारी बेटी का भी ऐसा ही हुआ था, वहाँ से ही बात आई थी, हमने कुछ नहीं किया था, अपने आप हो गया सब। तो ऐसे ही वो सोच रहे थे नंद बाबा से, यशोदा मैया से कैसे बात करें, अभी वहाँ से ही हल्दी लगा के आगे, मतलब बातचीत वहीं शुरू हो गया, हमको खाली हाँ बोलना है बस। तो हाँ बोलना मतलब क्या, कुछ शगुन भेजना पड़ेगा ना। तो बहुत सारे मोती थे उनके पास, अनेक भंडार थे, मोती हीरे पाछू क्या क्या बोलते ना उसको, रूबी डायमंड्स अष्ट रत्न थे उनके पास, बहुत बड़े भंडार थे उनके पास। तो मोतियों का भंडार खोल दिया, कहते हैं 1,00,000 मोतियों की माला भेज दी, एक एक मणि मोतियों की माला में कई मणि थे, और एक एक मणि ना 10,000 स्वर्ण मुद्राओं से भी खरीदने के योग्य नहीं थी, इतनी महंगी थी वो। ऐसे 1,00,000 एक 100,000 हाँ बैलगाड़ी में लाद दिए मणि मोतियों के माला और भेज दिया ब्राह्मण के साथ। अच्छा अभी वहां पर क्या हो रहा है, देखो सीन नंबर 1 यहाँ पर हो गया, सीन नंबर 2 उधर क्या चल रहा है। एक्चुअली सीन नंबर 1 था वो, ये सीन नंबर 2 था। तो सीन नंबर 3 में क्या हो रहा है, यशोदा माई जो है ना वो बहुत परेशान है। यशोदा माई परेशान है बहुत, क्योंकि अभी वो तभी तो वो आकाश में थी भाव में, फिर वो जमीन पे उतर गई है ना, फिर उनको लगा अरे बाप रे मैंने क्या किया, नंद बाबा क्या कहेंगे, सॉरी वृषभानु बाबा क्या कहेंगे, कीर्ति दीदी क्या कहेगी, यही रिवाज नंदगांव के, लड़की को बुला लेना किसी काम से और सगाई करा के भेज देना। हाँ क्या सोचते होंगे, बहुत संकोच हुआ, बहुत ज़्यादा संकोच हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, पता नहीं अभी क्या होगा सामाजिक दृष्टि से, अभी क्या हमारी संकुचित अवस्था होगी, बहुत विचार में थे। उतने में वहां से बरसाने से गाड़ी आती है, बैलगाड़ी। हाँ पता नहीं अभी डांटने के लिए आ रहे हैं क्या, मैसेज लेके आ रहे हैं पता नहीं, लेकिन देख रहे पीछे बहुत सारे मोती हैं। हाँ ब्राह्मण आता है, आपने जो भी कुछ किया वो हमारे राजा को मंजूर है। तो हमारे मराठी में कहावत है, जीव भांड्यात पड़ला, क्या बोलते हो गुजराती में उसको, ओह सोच क्या सोचा था मैंने और क्या हुआ, मतलब अच्छा हुआ जो बुरा नहीं हुआ। तो फिर वो मोतियों की भेंट देते हैं, शगुन कहते हैं कि आपको भी शगुन भेजना पड़ेगा। वो कहानी मैंने आपको बता दी कैसे कृष्ण भगवान ने फिर मोती उपजाए, और वो मोती राधा रानी के मोती से भी अधिक तेजस्वी थे, उनको बरसाने भेज दिया। तो इसका नाम पीली पोखर क्यों पड़ा, क्योंकि राधा रानी ने अपने पीले हाथ यहाँ धोए और सारा कुंड पीला हो गया। मुझे पूछना नहीं कि इतनी से हल्दी से पूरा कुंड कैसे पीला हो गया। हाँ क्योंकि हमारे महाराज जी बताते हैं वृंदावन में तर्क की तर्क है ना, तर्क वो घर छोड़ के जाना है, वृंदावन में तर्क लेके जाना नहीं है। अरे दोनों रोए तो एक पूरा कुंड कैसे बन गया, ये तो 5 ml का अश्रु ग्रंथि होती है, कितना अश्रु बहेगा उसका, टैंक खाली हो जाएगा फिर भी एक ग्लास भी नहीं भरेगा आपका, और आप बोल रहे कि पूरा कुंड बन गया, और कई कुंड बने ऐसे। राधा रानी वहां रोई मान सरोवर में, उधर भी बड़ा कुंड, पूरा सरोवर लंबा समुद्र जैसा बना हुआ है। तो ये सब बातें यहाँ पर बरसाने में आके करना नहीं है, सब तर्क वर्क जो है ना, तर्क शास्त्र वो सब बंबई में कुवैत में छोड़ के जाना है, बरसाने में जाना है। और एक बात सुनना, श्रीमद् भागवत जब आप पढ़ते हो ना तो उधर भी तर्क का कोई काम नहीं है, भगवत गीता पढ़ते हो तब तर्क का पूरा इस्तेमाल करना, पूरा सोच सुचार से समझना उसको, एक बार समझ में आया ना तो फिर तर्कशास्त्र को एकदम रिटायर कर देना आप। तर्कशास्त्र निवृत्त हो जाना और फिर बरसाने में भागवत में प्रवेश करना, क्योंकि ये लीला है भगवान की, भगवान क्या नहीं कर सकते हैं। हाँ एक बूंद में सागर निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं क्या कह रहा था, पूरा कुंड पीला हो गया। अभी पूरा कुंड पीला हो गया तो ये सब बातें हो गई। फिर राधा रानी ने क्या किया, जो वापस मोती आए ना नंदगांव से, उसको डबारा गांव में रत्न कुंड के किनारे उपजाए। क्या उपजाए? हीरे उपजाए। कृष्ण ने मोती से मोती उपजाए, भले अच्छे क्वालिटी के उताऊ, लेकिन राधा रानी ने मोती से हीरे उपजाए। बताओ कौन श्रेष्ठ है, राधा रानी कृष्ण श्रेष्ठ है? बताओ श्रेष्ठ कौन है बताइए। कृष्ण भगवान ने तो कृष्ण के मोती ही बनाए, राधा रानी ने मोती के हीरे बनाए। उसका नाम है रत्न कुंड, जिसके किनारे पे हीरों की खेती की। यदि वो अलग बात है, कभी अलग से यात्रा करेंगे हम सब सखियों के गांव की। हाँ देखो, ऊंचा गांव, फिर अंजनोक, फिर डभारा, फिर स्वर्णपुर, फिर रिठोरा, ऐसे बहुत सुंदर 8 गांव हैं सखियों के। चंपकलता का करेला, इंदुलेखा का कमई, चित्रा सखी का चिकसोली, चिकित्सापुर, सब बहुत सुंदर सुंदर गांव है। हर एक गांव में अलग लीला है। तो एनीवेज, तो अभी कैसा है ना, कृष्ण भगवान को बहुत देर बस नंदगांव में रहा जाता नहीं, व्याकुल हो जाते बेचारे, तो कई बहाने करके आ जाते हैं। तो आ गए, रहा नहीं गया तो आ गए, तो यहाँ पर आ गए, बॉर्डर पे देखा तो अरे ये तो कुंड तो पहले देखा हुआ है, पीला कैसे हो गया? उनको पता नहीं यहाँ पर क्या लीला हुई, तो पीला कैसे हो गया? आप सोच रहे हैं पीला कैसे हो गया, पीला कैसे हो गया? सखा भी साथ में है, ये अपने आप में पूछ रहे हैं, अभी ये भी भाव में चले गए, पीला कैसे हो गया? और कैसे ना, देखो मैं आपकी दिखाता हूँ आपको। ऐसे बोलते बोलते ये कुंड में उतर गए, पीला कैसे है, पीला कैसे करते उतर गए। और जैसे जैसे उतर गए ना, वैसे पीले पीले होते गए। कुछ समय बाद में उनकी पुकार जो है ना, वो मतलब पुकार यानी प्रश्न जो भी कुछ है, ऐसा आवाज आकाश में गूंज रहा है, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है, व्हाट इज द येलो सब्सटेंस। तो कुछ देर बाद में सब लोग इकट्ठा हो गए, अरे कौन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो जब लोग इकट्ठा हो गए तो क्या हुआ, 2 ऐसे पंजे और 1 मोर मुकुट, ऐसे 3 चीजें पानी में घूम रही है और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, पूरे यहां तक नीचे चले गए। मोर मुकुट जो है वो ऊपर है और 2 हाथ ऐसे पूछ रहे हैं, तो 2 हाथ और 1 मोर मुकुट, 3 वस्तु ऐसे घूम रही है और आसमान में आवाज गूंज रही है, ये पीली वस्तु क्या है। कुछ देर बाद में वो लोग पूछ रहे कौन है इसके अंदर 2 हाथ और 1 मोर पंख। फिर बाहर आया, बाहर आया तो क्या, अभी पिक्चर में तो आधा पीला और आधा नीला है, लेकिन बाहर जब आया तो पूरा पीला, फुल गोल्डन। ठीक है भाई, चमत्कार है कुछ राधा रानी का, लेकिन ये चमत्कार ना ग्वाल बालों के लिए खुशी की बात नहीं थी, क्योंकि जब बाहर आए ना फिर वही पूछ रहे हैं, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु क्या है। अरे चलो ये भी ठीक है, प्रश्न कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका उत्तर कहीं ना कहीं मिल जाएगा बाद में, लेकिन उसके बाद में क्या बोल रहे हैं पता है, सब लोग ध्यान से सुन लो, वो पूछ रहे हैं श्याम सुंदर कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, वो मनमोहन किधर है। तो ग्वाल बालों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे तुम ही तो हो, नहीं कहाँ है श्याम सुंदर, कहाँ है, बहुत देर समझाया फिर भी वही पूछ रहे हैं, श्याम सुंदर से मिलाओ, श्याम सुंदर से मिलाओ। अभी ना प्रॉब्लम हो गया बहुत, अभी समझो अभी जयेश हमारा मित्र, हाँ वो पत्नी को बोलने लगेगा जयेश किधर है, तो पत्नी बोलेगी साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो गया मेरे हस्बैंड को, हाँ अपनी पहचान को ही भूल गया, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया उसका, खुद जयेश पूछ रहा है कि जयेश कहाँ है, जयेश कहाँ है, भूमि का पति जयेश कहाँ है, भूमि को ही पूछ रहा है भूमि का पति कहाँ है। देखो अभी हम लोग हंस रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मित्रों के लिए बड़ी समस्या है, अरे मैया को क्या बोलेंगे, अच्छा खासा था जब निकल गया था घर से, ये कैसा बना के लेके आया, क्या खाया पिया बीच में, कुछ धतूरा खाया क्या बीच में, हाँ कोई भांग पिया, क्या किया लाला ने, बहुत नटखट बालक है, कुछ खा पी लेता है, पता नहीं क्या करता है, बताओ बालक को बताओ। ऐसा मैया प्रश्न पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे उसको, कैसे कैसे वो, ऐसे मैया पूछने का डर नहीं है, खुद को भी दुख हो रहा है ना कि भाई दोस्तों को क्या हो गया मेरे। कहते हैं कि बालक ने उनको उत्तर नहीं दिया ना कि श्याम सुंदर कहाँ है, तो परेशान हो गए वो, फिर पेड़ को पूछने लगे, बलियों को पूछने लगे, पक्षियों को पूछने लगे, बंदरों को पूछने लगे, गाय को पूछने लगे, वन्य देवता ग्राम में सबको पूछने लगे, ग्राम में देवता को, कहीं तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा है। तब ग्वाल बालों को समझ में आया कि ये तो राधा रानी बन गया है पूरा, मतलब राधा रानी का पूरा भाव ही इस पे आवेशित हो गया है। अभी करे क्या उसका, डायग्नोस करके फायदा क्या है, इलाज तो है नहीं उसका कुछ, क्योंकि श्याम सुंदर खुद है, किसको दिखाएंगे श्याम सुंदर करके। तो बहुत दुखी हो गए, दिन भर ये सब नाटक चलता रहा, दिन भर रो रो कर पेड़ों से, बेलियों से, पक्षियों से, सबको पूछ रहे हैं कहाँ है मेरे कन्हैया। कहते शाम को इनका नशा उतर गया, राधा भाव का नशा। और कहते तब इतने थक गए थे ना, दिन भर रहे थे, जैसे कि किसी का आवेश हो गया शरीर में, कैसा होता है बाद भी पसीना पसीना होता है, थक गए बेचारे, अपने आप को पहचानने लगे कि मैं श्याम सुंदर हूँ। बहुत थके थे तो तभी थोड़ा खुशी हो गई ग्वाल वालों को, उनको घर पे लेके गए, सुला दिया भाई, किसी को बताया नहीं क्या हुआ आज, अब बताएंगे तो 50 प्रश्न पूछेंगे, कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ, अभी ठीक तो है। तो हमारे गुरु जी के गुरु भाई हैं बरसाना स्वामी महाराज, देखो नाम भी कैसा है, परम पूज्य बरसाना स्वामी महाराज, न्यू वृंदावन में रहते हैं। उन्होंने कहा था कि इस जगह पर सबसे पहले कृष्ण ने ये इंडिकेट किया, ये सूचित किया कि मैं अगले जन्म में गौरांग महाप्रभु के रूप में आने वाला हूँ, क्योंकि इस जगह पर वो गौरांग महाप्रभु बन गए थे इधर ही, राधा भाव को इतना अपना लेते कि अपने आप को भूल गए थे वो, ये है राधा भाव। हाँ, उसको अपनाने से, प्राप्त करने से अपने आप को आदमी भूल जाता है कंप्लीटली, यू फॉरगेट योर एग्जिस्टेंस जब ये राधा भाव छा जाता है। और ये पीली वस्तु क्या है, उसका उत्तर तो क्या दिया नहीं आपने, ये पीली वस्तु क्या है, ये पीली वस्तु राधा रानी का प्रेम है, राधा रानी का भाव है, जिसके जिसके स्पर्श होने से श्री कृष्ण भगवान इतने भाव विभोर हो गए। आपने भी पीला पहना है आज, याद करो मन, याद करो राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। और दूसरी बार फिर उन्होंने उधर पीली इमली तला के किनारे, यमुना किनारे बैठकर जब ध्यान किया था ना, राधा रानी का नाम मुख में, हृदय के आंगन में राधा रानी के चरणों पर ध्यान किया था, कालिंदी कुंज मंदिर तटे, कालिंदी तटे कुंज मंदिर गतो, तो उस समय पीले हो गए थे, उस समय राधा रानी ने स्पर्श किया तो जग गए थे। तो राधा रानी स्वयं चकित थी, तो राधा रानी ने पूछा क्या हुआ, तो कहते जब मैं आपके विरह में रास लीला छोड़कर यहाँ आके बैठ गया था तो मैं आप बन गया था, सब कुछ मुझे इतना आनंद आया कि ऐसा आनंद पहले कभी भी नहीं आया था, और मैंने तय किया है कि ये आपने मुझे स्पर्श करके डिस्टर्ब किया, अब मुझे और उत्सुकता बढ़ गई मेरे की, ये भाव क्या है इसको समझने के लिए मेरे मन में उत्सुकता जाग रही है। भले भगवान सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं सबके, सब सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत वृत् विदेव चाहम, सबको ज्ञान देने वाले, सब ज्ञान के स्रोत, सब ज्ञान का सार, सब ज्ञान से जिनको जानना है वो, हाँ, सबको स्मृति देने वाले, विस्मृति देने वाले, ज्ञान देने वाले भगवान, इसको जानते नहीं है कि ये क्या चीज़ है, ये राधा रानी के पास है, मैं जानना चाहता हूँ। बोले अगले एक बार पूरा अवतार लूँगा, हाँ एक पूरा अवतार खर्च करूँगा इसको स्टडी करने के लिए, पूरा एकदम स्पेशल लीव लेके जाऊंगा वैकुंठ से, एक स्पेशल लीव लूंगा, हाँ पीएचडी करने के लिए, ये भाव क्या है समझने के लिए। इस तरह से वो उन्होंने ऐलान किया। तो राधा रानी ने क्या कहा, हमारा भाव जब अपनाओगे ना तो पागल हो जाओगे, भाव विभोर हो जाओगे, अष्ट विकारों से ग्रस्त हो जाओगे, पेड़ों से गिरोगे, डालियों से गिरोगे, पत्थर पे गिरोगे, पानी में गिरोगे, कंकड़ में गिरोगे, जख्मी हो जाओगे, ये विचार भी मुझे सहन नहीं हो रहा है। तो जब भी तुम आओगे मेरा भाव लेकर तो मैं मेरी कांति से आपको ढक दूंगी। तो अंदर राधा भाव, बाहर राधा कांति, इसका मतलब इज इक्वल टू चैतन्य महाप्रभु। हृदय में राधा भाव, बाहर में राधा कांति, इसकी बराबरी श्री गौरांग महाप्रभु से होती है। तो ये है रहस्य। हाँ, ये सब रहस्य की बातें, ये किसी को, आम आदमी को समझ में नहीं आता, ये गुरुजनों की कृपा से, गौरांग महाप्रभु की कृपा से, राधा रानी की कृपा से ये सब पता चलता है, संत जनों की कृपा से। तो ऐसा ये दिव्य कुंड है आपके सामने, देखिए आप दर्शन कीजिए बढ़िया से, कितना सुंदर कुंड है, देखो इसके आसपास सब प्रकार के पेड़ हैं, पीलू के पेड़ हैं, कदम के पेड़ हैं, और बरगद के पेड़ हैं बड़े बड़े, और नीम के पेड़ हैं, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है। एक तो पेड़ ऐसा है कि दो पेड़ एक साथ में आ रहे हैं, एक ही बूंदे में से निकल रहे हैं, यानी इमली का पेड़ है और उस तरफ है, इमली का पेड़ है और उसके उसके शाखा में से पीलू का पेड़ निकल रहा है, पीलू का पेड़ जमीन में नहीं है, वो शाखा में से निकल रहा है। वैसे पीलू के पेड़ के पतले पतले ये शाखा है और इमली का इतना बड़ा बूंदा है, ऐसा जा रहा है ऐसा जा रहा है, इतनी बड़ी छाया उसकी, उसके नीचे बैठ कर हम प्रवचन करते हैं हमेशा बहुत सुंदर। तो देखिए इसको प्रिया कुंड भी कहते हैं और इसमें कई प्रकार की लीला हैं। देखो हम आपको ना एक एक करके सुनाते हैं। ये प्रियेश्वर महादेव हैं, ये शंकर महाराज जैसे उधर आए थे नंदगांव में आए थे ना कृष्ण भगवान को बालक रूप में देखने के लिए, इधर भी राधा रानी के बालक रूप को देखने के लिए आए थे। राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो गई भोले बाबा को देखकर और कहती है भोले बाबा यहीं रहो आप अभी, तो भोले बाबा इधर रहते हैं ये मंदिर में, प्रियेश्वर महादेव उनका नाम है। बहुत सुंदर लीला यहाँ पर, एक छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में आवे है, अंगना में आवे है छुम छुम बजावे है, छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में आवे है। तो ऐसे प्रियेश्वर महादेव जी को यहाँ पर आश्रय दिया है। अभी देखिए, और नारद मुनि यहाँ पर राधा रानी को देखने के लिए आए थे, कितना कुतूहल रहता संतों को, क्योंकि वैकुंठ में भी दर्शन नहीं होता ना बाल स्वरूप का, तो बार बार पृथ्वी में आते हैं, क्योंकि कैसा है ना आदमी समझो कितना भी सुंदर होगा जवान होने के बाद, लेकिन वही व्यक्ति बाल स्वरूप में अधिक सुंदर होता है। कभी काला कलूटा बालक भी होगा ना एकदम साउथ अफ्रीकन, तक जब बालक होता है ना तो बहुत मीठा रहता है, उसको देख के बहुत आनंद आता है। तो वैसे अगर सर्व सुंदर सौंदर्य की खान जब श्री कृष्ण भगवान जब बालक बनकर आते, सब सौंदर्य यामिनी राधा रानी जब बालक बनकर आती है तो कितने सुंदर होगी वो, उनकी अदाएं, उनके तोतले तोतले बोल बोलना, उनका सब कुछ, वो जो लीलाएं हैं कितनी मोहक होती है, मनमोहक। तो ये जन्म के समय में आए थे, थोड़ा चार्ट बना के आए थे रावल में, हाँ उधर दर्शन करने आए थे, फिर आदमी कुसुम सरोवर पर दर्शन किया अष्ट सखियों का, थोड़े बड़े हो गए तो वापस बरसाने में भी आए। और राधा रानी का अलग अलग रूप है ना, बालिका का रूप अलग था, अब ये अलग रूप है, बहुत सुंदर सुंदर रूप है। तो देख कर ऐसी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, मराठी में कहते हैं विस्फारित हो गई आंखें, ऐसे मानो रूप रूप माधुरी को उसे पी रहे आंखों से। तो राधा रानी को बड़ी बड़ी आंखें देखकर डर लगा बहुत तो उनके हाथ में कुछ मेवा थे ना, वो काजू किशमिश होता है ना, बालक सब खा रहे थे बालिकाएं, तो ये ऐसे बालिका इसके हाथ में दोनों हाथ में मेवा थे और नारद मुनि के हाथ में सौंप दिया और भागी वो। उतने में से मैया आई, कीर्ति मैया, तो भाग के मैया के गोद में गई, मैया मैया ये महाराज ये कोई बाबा आयो है, वो घूर घूर के देख रहे मुए ये बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे। तो मैया कहते अरे भैया बेटा डरो नहीं, यही बाबा है वो, तो तुम्हारे जन्म के समय आके गंडा बांध के गए थे, तुमने आंखें नहीं खोली थी, तुम मुंह नहीं खोलती थी, ये बाबा की कृपा से तुमने आंखें खोली थी, कोई डरने की बात नहीं। फिर भी वो ऐसी चिपक के मैया को देख रही है ऐसी, और नारद मुनि क्या कर रहे हैं, मेवा प्रसाद खा रहे हैं, उनको मेवा प्रसाद मिल गया राधा रानी के हाथ का। तो वो लीला भी यहाँ पर हुई है। और वृंदा बरसाने में होली होती है ना, वो 45 दिन की होती है, वसंत पंचमी से लेकर फाल्गुन पूर्णिमा से आगे 5 दिन तक, फाल्गुन वद्य पंचमी तक चलती है। क्या क्या कहें आपको, लड्डू मार, लट्ठा मार, छड़ी मार, बैत मार और भी एक कल नाम पढ़ा था मैंने, वो कहाँ कहाँ बठैन में बलदेव जी में होरंगा होता है और उधर छड़ी मार होती है, बलदेव जी की होली अलग होती है और जावट में अलग होती है, सब जगह अलग अलग। फॉलेन में उधर आदमी वो होली की अग्नि से निकल जाता है, कुछ नहीं होता है उसको, ऐसा चमत्कारित वृंदावन धाम है। और ये होली का उगम बरसाने में होता है, तो वो वहाँ की मेन जो होली है वो आरंभ तो होती है बसंत पंचमी से, रोज होली खेलते हैं उसके बाद, लेकिन मेन होली रंगीली होली कहते हैं, वो फाल्गुन शुद्ध नवमी को होती है, हमारे यहाँ पर पूर्णिमा को मनाते हैं, धुलेटी धूलि वंदन, लेकिन वहां पर नवमी को मनाते हैं। और नवमी को होली का निमंत्रण देने के लिए नंदगांव से कृष्ण की ओर से एक पांडे ब्राह्मण आता है, होली का निमंत्रण लेके आता है कि कल होली खेलना है आप आ जाओ। तो वो इधर आता है, पीली पोखर पे आता है, और पीली पोखर पे आते तो सब उसको सखियां धो डालती है, पूरा रंग से पूरा धो डालती है, अपनी बम्बई भाषा में कैसे पूरा उसको गीला कर डालते सब जगह से। अरे इतनी सारी लड़कियां आके मारेगी तो क्या करेगा बेचारा ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण है बेचारा, कोमल आदमी ये सब वो गुजर की लड़कियां सब बहुत आतंकवादी रहती है, ऐसा भिगा दिया ऐसा भिगा दिया। बेचारा पांडे यहाँ देखो कि वहां देखो, ऐसा बेचारा बचा रहा है अपने आप को। राधा रानी उसमें नहीं थी, राधा रानी बाद में आई, देखा बेचारा पांडे को इतना परेशान कर रही लोग लड़कियां, तो गई और पांडे को छुड़ाया। बोले महाराज जी माफ करना, हमारी लड़कियां उद्दंड है, माफ कर देना इनको। तब तक तो पूरा लाल पीला हो गए थे। हाँ तो बोले बाबा महाराज जी चलो घर पे चलो, आपके लिए गरम गरम पानी की, सुगंधित पानी की व्यवस्था करते हैं और उपटन की व्यवस्था करते हैं। तो बेचारी घर ले गई, उनको क्षमा मांगते हुए घर ले गई और सुगंधित जल स्नान के लिए व्यवस्था किया, राज वस्त्र दिए, गीले कपड़े तो घर गीले हो गए ना, पूरे रंगीत हो गए, तो राज वस्त्र दिए, आसन पे बिठाया, पूजन किया, ब्राह्मण है ना, पादक शालन किया, पूजन किया, अच्छे अच्छे भोग दिए, बहुत आनंद दिया। तब तक मैया आ गई, और पता चला मैया को नंदगांव से ब्राह्मण आया है होली का न्योता देने के लिए। मैया बड़ी खुश हो गई और लड्डू लेके आई थाली भर के, और मोड़े में भर दिया वाकई, हाँ पूरे मोड़े में भर दिया। हाँ तो उसको लड्डू मार होली कहते हैं। हाँ कीर्ति मैया ने बड़े प्रेम से ब्राह्मण के मुख में लड्डू भरे थे, वो लड्डू मार होली है। आज वो वैसे नहीं भरते हैं, नंदगांव से आज भी लोग आते हैं, ब्राह्मण न्योता लेकर आते हैं तो उनके ऊपर लड्डू फेंके जाते हैं और वो लड्डू कैच करते हैं, और लड्डू कैच करने से अपने आप को भाग्यवान मानते हैं, कितने लड्डू इकट्ठा किए, ज्यादा इकट्ठा किए तो भाग्यवान मानते हैं। क्या भाव है देखो नंदगांव बरसाने में। हाँ इधर तो क्या ऑयल पेंट लगाना, कीचड़ लगाना, गटर में से कुछ निकाल के लगाना, लड़कियों पर कुछ पिचकारी मारना, ये बीभत्स काम है। बीभत्स मतलब क्या, एकदम घृणास्पद। और वहां देखिए सब प्रेम का ही काम है, सब जगह प्रेम ही प्रेम है, हर चीज प्रेम की है, होली प्रेम का उत्सव है। हाँ और आचार्यगण बताते हैं बहुत सुंदर बात, सब लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमने बचपन से बंबई में क्या देखा है, लड़कियों को पकड़ के पीछे से लगाना, बालों में लगा देना, कुछ करना, ऑयल पेंट लगाना, ऐसा लगाना गलत, ऐसा लगाते हैं कभी कभी तो महीनों महीने एलर्जी जाती नहीं है, फोड़े आते हैं उसके अंदर, ये हमने सब देखा है, हमको लगता है यही होली है, लेकिन वहां जाके पता चलता है कि होली क्या होती है। तो एक तो खेल है होली का, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कृष्ण भगवान होली में हारने के लिए ही आते हैं। द पर्पज ऑफ होली इज टू गेट डिफीटेड, नॉट टू गेट वन, नॉट टू विन। ये बात समझना जरूरी है। ऐसा होता नहीं होता तो होली में कैसा होता है ना, जब भी आप समझो होली खेल रहे हैं, होली में जब आप मार खाते हो, हार जाते हो, तो हारने वाले को फगुआ देना पड़ता है, फगुआ मतलब गिफ्ट देना पड़ता है, दक्षिणा देनी पड़ती है। और दक्षिणा किस किस की होती है, स्वर्ण की मोहरा होती है, उसमें कपड़ा होते हैं, अलंकार होते हैं, मोतियों के, सोना के, हीरा के अलंकार होते हैं, वस्त्र होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं। तो हमारे कन्हैया जी जो है ना, वो बक्से भर के ही चलते हैं पहले वहां से, समझो आप विनिंग टीम हो, समझो विनिंग टीम हॉकी खेलने जा रहे हैं, एकदम ऐसा पूरा फाइनल में जा रहे हैं, तो आप तो जीतने के लिए ना, यू आर गोइंग टू विन, यू वांट टू गो टू प्ले एंड विन, नॉट टू गो एंड प्ले एंड लूज। तो ये हारने के बाद में जो देना है वो बक्से बक्से भर के ले जा रहे हैं, वहां पर पिचकारी भर के ले जा रहे हैं, जैसे होता ना वो सोल्जर कैसा होता है, सोल्जर उसके अंदर वो इधर बंदूक होती है, इधर वो मशीन गन होती है, इधर पट्टा में गोलियां होती है, इधर हैंड बम होता है, हाँ हैंड ग्रेनेड होता है, हाथ बॉम्ब, ऐसा पूरा बॉडी में लदा होता है, पीछे बैग में खाने की वस्तु होती है, इधर गोले उधर गोले, इधर बंदूक, इधर एक पिस्टल, इधर एक राइफल, क्या क्या होता है उसके पास। वैसे हमारे होली की हुरियारी, उनको कहते हैं हुरियारी, पूरा सज सज के जाते हैं, पूरा फेटा वेटा पगड़ी पहनकर, पूरा ढाल पहनकर, इधर पिचकारी, इधर लाल रंग, इधर गुलाल रंग, इधर अबीर, इधर क्या क्या, पूरा ऐसा पूरा वेल वेल प्रिपेयर्ड, पूरा योद्धा जा रहा है युद्ध करने के लिए, लेकिन सब औजार अपने अस्त्र शस्त्र लेके जा रहे हैं और साथ में बक्से भी लेके जा रहे हैं। हाँ और यहीं पर आकर होली खेलते हैं और हार जाते हैं, यहाँ पर होली यहाँ पर आके हार जाते हैं, तो राधा रानी मुंह में काला लगाती है,
खेस खींच लेती है, मतलब पुरुष के लिए खेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो खेस खींच के अपमान कर लेते हैं और पीठ पर एक गाली लिखते हैं, और गाली मैं यहाँ बोल नहीं सकता, बहुत भयंकर गाली है वो, और पीठ पर लिखते हैं, उसको धक्का मार के भेज देते हैं। हाँ, होली खेलने आते हो और क्या कहते हैं, गुस्ताखी करते हो, हाँ होशियारी करते हो, चालाकी करते हो, चापलूसी करते हो, चलो जाओ यहाँ से, ये सब लीला पीली पोकर पे। हाँ, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। फिर उसके बाद में वामन द्वादशी, अभी जो गई ना पिछले महीने में, वामन द्वादशी में पीली पोखर में डोंगी लीला होती है, मतलब बोट बोट की लीला, नौका विहार होता है। और क्या बताऊं आपको, नौका विहार ये पीली पोखर का बहुत बड़ा उत्सव हुआ करता था, लेकिन लोगों ने ना भैंस धोकर, कपड़े धोकर गंदगी इतनी पैदा की, इतना कीचड़ बन गया, तो बोट चलना ही मुश्किल हो गया। 300 साल तक यहाँ पर नौका विहार नहीं हुआ। फिर रमेश बाबा जी महाराज ने उनके टीम में जेसीबी बुलाया, और जेसीबी से पूरा कीचड़ निकाल के नीचे तक गए, टनों का कीचड़ निकाला, और 300 साल बाद में स्वच्छ पानी डाला उसके अंदर, और फिर 2 साल पहले पहली बार नौका विहार हुआ उसके अंदर। देखिए कैसा है ना, संतों के बिना धाम का जो कल्चर है ना वो रिवाइव नहीं होता है। ये सब कलयुग का प्रभाव से क्या है कि सब खत्म होते जा रहे हैं, और जो भी बचा हुआ है वो विभत्स बनते जा रहे हैं, परवर्टेड। तो अभी वो पुरानी जो चीज़ है ओरिजिनल, वो कौन इस्टेब्लिश करेगा, वो संत ही करते हैं। उनके हृदय में साक्षात्कार होता है, और साक्षात्कार के वजह से वही उसको पुनर्स्थापित कर सकते हैं। तो डोंगी लीला को ब्रजवासी बाबा ने वहाँ पर पुनर्स्थापित किया। अभी हर साल होती है बामन द्वादशी के दिन, भाद्रपद शुद्ध द्वादशी के दिन। तो ऐसा लीला है यहाँ पर। और एक लीला बाकी है कि यहाँ पर राधा रानी को मैया उपटन लगाकर स्नान कराती थी बचपन में। तो राधा रानी का चरणामृत है ये पूरा, कृष्ण का चरणामृत, राधा रानी का चरणामृत, गोपियों का चरणामृत। हाँ, और देखिए कौन खड़े उधर किनारे पे, गौर से देखो, परम पूज्य राधानाथ महाराज खड़े हैं पीली पोखर के किनारे, गौर से देखिए। जय जय श्री राधे श्याम, गुरुदेव को वंदन है, पीले पोखर को वंदन है, और प्रियेश्वर महादेव को वंदन है हमारा। और देखिए पीली पोखर से सीधे राधा रानी के मंदिर का दर्शन होता है, क्योंकि जब सबसे पहले आए थे ना होली खेलने के लिए, अगले दिन आए ना, फर्स्ट डे तो ब्राह्मण आया था, नेक्स्ट डे ये आ गए ना, तो राधा रानी वहाँ पर नहीं थी, कुछ कारण से रूठ गई थी और महल में थी अपने, तो इन्होंने यहाँ से राधा रानी को आवाज़ दी, और विशाखा ने बोला अरे देखो नीचे आ गए सज के होली खेलने, तुम क्यों रूठ के बैठी हो, तो झरोके में आई, तो फिर यहाँ से उन्होंने पिचकारी लगाई। लेकिन कहते हैं पिचकारी पहुँची नहीं उतनी दूर तक, लेकिन मन का भाव पहुँच गया, तो राधा रानी मान छोड़कर तुरंत भाग भाग के आई, फिर होली का खेल आरम्भ हो गया। ऐसे बहुत अद्भुत जगह है ये, बहुत अद्भुत रहस्यमय जगह है। और फिर लट्ठामार होली होती है उस दिन, है ना, ये होरियारी नंदगांव के हैं, इन पर सब यहाँ की जो औरतें हैं ना वो बरसती हैं, लट्ठा लेकर बरसती हैं। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कैसे बरसती है लट्ठा लेकर, आनंद आएगा आपको देखकर। एक सेकेंड रुकिए, अभी दिखाता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दिखाई पड़ रहा है क्या सबको, दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, जय हो जय हो। हाँ इसको कहते लट्ठा मार होली, राधे राधे। हाँ जय हो, जय हो लोटा मार होली वाले की जय हो। जय हो, जय बरसाने वाली की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये है होली, बरसाने की होली, राधे राधे। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से ये होली का उत्सव जो है ना वहाँ पर संपन्न होता है, बहुत सुंदर उत्सव है। एक मिनट में आपको मैं वो स्लाइड वापस दिखाता हूँ, जरा थोड़ा टाइम लगेगा, एक मिनट थोड़ा सा। ये सब टेक्निकल सर्कस करना इतना आसान काम नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी दिखाई पड़ रहा है सबको? यस ओके, यस वेरी गुड, थैंक यू। वो मेरी आवाज भी आ रही ना? हाँ देखिए, तो ये जो मारते हैं ना, देखो कैसे लट्ठ को बनाया, देखो लट्ठे को कैसे बनाया है। 15-15 दिन लट्ठ को तेल लगाते हैं और लट्ठ को प्रोसेस करते हैं, और 15-15 दिन घर के जवान औरतों को कुछ काम नहीं देते हैं, खाली मेवा खिलाते हैं, घी खिलाते हैं, मक्खन खिलाते हैं, और बहुत मालिश करवा के उसको तगड़ा बना देते हैं, और नया जोड़ा लेके आते हैं उनके लिए। हाँ ऐसा वहाँ पर बरसाने में रिवाज है कि पुराना कपड़ा बरसाने में पहनना होली में अपराध है। होली में हर व्यक्ति जो है ना वो नया कपड़ा पहनता है, कितना भी गरीब हो होली में नया कपड़ा पहनेगा, और ख़ास करके जवान औरतें जो हैं उनके लिए अभी 10-10 हज़ार की जोड़े पहन के आते हैं सज धज के, और नई नई बहुओं को बहुत प्रेम से 15 दिन तक काम देती नहीं है, बोला पीटना है तुमको जाके। ऐसे कूद कूद कर पीटते हैं ना देखो, और बेचारे वो जो ढाल है ना वो बलराम जी की प्रतीक है, और बलराम जी की प्रतीक है वो ढाल, तो बलराम जी को धारण करके उसको बचाते हैं अपने आप को। और ये जो गली है ना उसको कहते हैं रंगीली होली, रंगीली गली कहते हैं उसको। इस पे गवर्नमेंट कई ट्रक धूल डालती जाके और उसमें वो उत्सव मनाते हैं। जब ये उत्सव शाम को 5 बजे शुरू होता है, हाँ रंगीली होली के दिन, और 1 घंटा में समाप्त होता है, 1-2 घंटा में समाप्त होता है। बहुत भीड़ होती है उसके अंदर भयंकर। ये सब फिल्म जो दिखाया ना ये खुद मैंने निकाला हुआ है, मैं एकदम छत पे था, पूरा रंग से रंगा हुआ था और मैं वीडियो ले रहा था ऊपर से। तो क्या करते हैं ये पीटते हैं सब लोग, उस पर रंग डालते हैं, उनको गाली बकते हैं उनके लिए, और ये पीटने के बाद में सखियों के पैर पड़ते हैं, उनके चरणों को वंदन करते हैं, जेब से पैसा निकाल के देते हैं, और वो माताजी जो है उसका पति साथ में रहता है, तुरंत पैसे अपने जेब में जमा कर लेता है। मतलब दक्षिणा है ना उसकी, पत्नी की दक्षिणा है वो। दक्षिणा में उनको वो क्या अंगूठी मिलती है, कभी कुछ गेवर मिलते हैं, कुछ मिठाई मिलती है, पैसे मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, जैसे प्रेम से देते हैं। बहुत बड़ा भाग्य मानते हैं अपने आप को लट्ठा मार होली में। हमको भी बहुत बार निमंत्रण दिया गया कि आओ आप भी खेलो, आप भी खेलो, लेकिन हम इसके लायक नहीं है। कौन सिटी बजा रहा है? सिटी बंद करो। और फिर मैं क्या कहता, जब शाम को समाप्त होता है ना, तो रास्ता में एक कण भी धूल नहीं मिलती है। ऊपर से रास्ता में गड्ढे बनाते हैं और सब गड्ढे बना बना के रज लेके जाते हैं। ऐसा प्रेम का उत्सव सभी गोपियों के चरणों की रज ले जाते हैं घर पे अपने। रंगीली गली, हाँ बहुत फेमस गली है वो। तो ऐसा ये मुझे भी एक बार मिला था फगुआ, चांदी की अंगूठी मिली थी। सब ग्वाल बाल लेके आते हैं, तो मैंने क्या कहा था, कृष्ण भगवान अपने पेटारे भर के लेके आते हैं और सब गोपियों को फगुआ बांटते हैं। ये उनका आचार्य बताते हैं सब लोग कि होली का खेल जो है ना वो हारने के लिए होता है। मतलब भगवान अपने भक्तों के सामने हमेशा हारना चाहते हैं। ऑलवेज कृष्णा वॉन्ट्स टू गेट डिफीटेड इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स। अपने भक्तों के सामने हमेशा अपने आप को नीचे रखना चाहते हैं, विजयी बनना नहीं चाहते, पराजयी बनना चाहते। तो ये ब्रज का जो बहुत आनंद है इसके अंदर, आनंद के बीच बहुत रहस्यमय बातें भी छुपी हुई है। केवल ऐसा लट्ठा मार हंसी मजाक ऐसा सब कुछ है, सब कुछ है, आनंद बहुत है, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा रहस्यमय बातें छुपी हुई है, वो समझना बहुत जरूरी है। और बार बार से केवल मनोरंजन होगा आपका, लेकिन संतों के चरणों में बैठेंगे तो सब रहस्य की बातें बताएंगे आपको, लीला बताएंगे, उसका रहस्य बताएंगे, तब जाके हमको बरसाने के अंदर का जो भाव है वो समझ में आएगा कि बरसाना क्या चीज है। पहले मजे मजे की चीज है, होली खेलने वाली चीज है, राधाष्टमी है, हरियाली तीज है, हरा कपड़ा पहनो, गोल्डन कपड़ा पहनो, ब्लू कपड़ा पहनो, बहुत सारा नया जोड़ा पहनो, ठीक है वो तो बाह्य भाग है सब, लेकिन हृदय के अंदर हमको पता होना चाहिए। सदैव अपने आप को भक्तों के सामने नीचा रखो। आप कितने भी बड़े होंगे, सीनियर होंगे, धनवान होंगे, ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, लेकिन भक्तों के सामने अपने आप को न्यून रखो। तृणादपि सुनिचन, हमेशा दास दास अनुदास बनकर रहो। ये होली से होली का खेल का संदेश है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए कैसे कैसे रंगते लोग देखो। हाँ कोई विभत्स बात नहीं है इसमें, कोई लड़कियों को छेड़ने वाली बात नहीं है, सब प्रेम ही प्रेम है। नंदगांव का बरसाने पर प्रेम है, बरसाने का नंदगांव पर प्रेम है। तो रंगीली होली के दिन बरसाना की लड़कियां जो है वो नंदगांव के लड़कों को पीटती हैं। अगले दिन यहाँ के लड़के वहां जाते हैं और नंदगांव की लड़कियां उनको पीटती हैं। और नंदगांव की होली दशमी के दिन, फिर ग्यारहवीं को रंग भरनी होली वृंदावन की, फिर उसमें बांके बिहारी राधा रमन जी सब लोग होली खेलते हैं। रंग भरनी होली एकादशी कहते हैं उसको। फिर उसके बाद में जावट की होली, फिर उसके बाद में बठेन की, छोटी बठेन की होली, बड़ी बठेन की होली, उसके बाद में होरंगा, उसके बाद छड़ीमार होली, उसको क्या क्या आपको बताएं। अभी हर रोज एक नई नई होली होती है, अलग प्रकार की, अलग प्रकार का भाव होता है सब जगह पर। तो एनीवेज इस होली के उससे बाहर निकलना मुश्किल है बहुत। होली शुरू हो गई ना एक बार फिर उधर ही अटक जाते हैं, आगे जाते ही नहीं फिर। चलो कोई बात नहीं, अभी आपको एक सुंदर स्थान ले, अभी होली का रंग आपने अगर उतार लिया होगा, स्नान वान कर लिया होगा, तो आप ही आगे जाते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपने भी स्नान कर लिया होगा, रंग वंग उतार के नए कपड़े पहन ले होंगे, रंगीले कपड़े उतार दिए होंगे। देखो हमने भी गुलाबी पहन कर रखा है, देखो सब तुलसी महाराज ने भी गुलाबी पहन कर रखा है ना। होली का उधर विशेष वस्त्र मिलते हैं, एकदम कलरफुल वस्त्र मिलते हैं। ठाकुर जी को भी कलरफुल श्रृंगार करते हैं, वो कपड़े ऐसे होते हैं उसमें कई प्रकार के रंग होते हैं कपड़े में, ऊपर से कपड़े में भी रंग मारते हैं। मैं एक बार ऐसा वृंदावन से आ रहा था होली के दिन, थोड़ा मंगला करके सुबह ऐसे जल्दी जल्दी आ रहा था, तो एक लड़का आया मेरे सामने, ब्रजवासी लड़का, बोले बाबा रंग डाल दो आपके ऊपर। बोला ठीक है डालो, अभी क्या है, रंग होली का दिन है। दो पिचकारी निकाली ऐसे दो हाथों में, ऐसे पिचिक 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 करके पूरा भिगाया। मतलब दिल भर गया तो ठीक है, तो और भिगा दो। दिल भर के बड़े प्रेम से, ऐसा कुछ मस्ती नहीं कुछ नहीं, बड़े प्रेम से भिगाया। मैंने कहा संतुष्ट हो गए? हाँ संतुष्ट हो गए, चलो चले जाओ। फिर हम लोग जो जा रहे थे तो होली में से कुछ लड़की आ रही थी रिक्शा में से, अरे महाराज जी ये रंग फेंक दिया मुँह पर, अरे तालियां बजा दिया, आगे चले गए। मैंने ना मतलब वातावरण में इतना आनंद मैंने कभी देखा नहीं आज तक, प्योर हैप्पीनेस, ऐसा क्या कहते हैं उसको, बीभत्स आनंद नहीं, किसी को परेशान करके जो खुशी मिलती है वो नहीं, एक शुद्ध आनंद का वातावरण जो है ना मैंने होली के समय पर वृंदावन में देखा है। कहीं भी जाओ, वृंदावन जाओ, बरसाना जाओ, नंदगांव जाओ, इतना प्रेम होता है वातावरण में कहीं किसी को पीड़ा देने की बात नहीं होती है, कष्ट देने की बात नहीं होती है, दूसरों के दुख पर हंसने की बात नहीं होती है। बड़े प्रेम से होली खेलते हैं, केवल प्रेम का आदान प्रदान है बस। तो कभी जाना चाहिए उस समय पे, हाँ, रंगने की तैयार रखे, लेकिन उसमें जो दिव्य आनंद है ना, तो आपको पता चलेगा कि कैसी होली होती होगी। हमारे यहाँ पे तो विभत्स होली होती है, वहां पर कैसी, अभी तो ऐसी इतने आनंद की होती है, तो उस समय कृष्ण के समय पर कैसी होली होती होगी। केवल प्रेम, शुद्ध प्रेम का आदान प्रदान होता था। एनीवेज, अभी आप होली से जरा विरक्त हो जाइए और ये भानोखर पे आइए। ये भानोखर बहुत सुंदर स्थान है, ये लोगों को पता नहीं है, 2 मिनट के अंतर पर हमारे कैंप, बस स्टैंड 2 मिनट के अंतर पर है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। इतना विशाल कुंड है, ये भी विश्वानु महाराज का विशेष कुंड है। जो आगे बिल्डिंग दिख रही ना, उसको जल महल कहते हैं। तो कैसा है ना, वो जल महल का मतलब क्या होता है कि महल जल के अंदर होता है, मतलब जल जल के अंदर ही महल होता है। ग्राउंड फ्लोर इज वाटर, फर्स्ट फ्लोर इज फ्लोर, और ग्राउंड फ्लोर इज वाटर। तो ऐसे महल में, हमारे कैंप में, हम लोग आई कैंप में, हर कैंप में एक दिन भानोखर को साफ करते हैं पूरा, वो बिल्डिंग को साफ करते हैं, पूरा साफ करते हैं, पूरा पूरा कंप्लीट, और दीपक लगाते हैं रात को। एक दिन पीले पोकर साफ करते हैं, उधर दीपक लगाते हैं। एक दिन राधा सरोवर साफ करते हैं, वहाँ पर कल दिखाया चित्रपट में। फिर एक दिन प्रेम सरोवर साफ करते हैं, वहाँ पर दीपक लगाते हैं। ये हमारी हर कैंप की लीला है। दिन भर ब्रजवासियों की सेवा करते हैं, और शाम हो गई तो जाकर साफ सफाई करते हैं और गीत गाते हैं जाके वहाँ पर, प्रेम के गीत, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर क्या लीला है, ये वृषभानु महाराज का प्राइवेट कुंड है, यहाँ पर राधा रानी आके स्नान करती है। यहीं पर कंस आया था काले घोड़े पर बैठकर, क्यों? क्योंकि पहले ये गोकुल में थे ना, तो वहां पर राक्षस भेजते थे रोज, तो सब राक्षस का एक ही प्रॉब्लम था, टिकट तो 2-वे था, लेकिन उपयोग एक ही 1-वे टिकट, वापस आता नहीं था कोई, जाता था तो वो लौट के नहीं आता था, उधर ही उसका काम तमाम हो जाता था। तो वो फिर ये लोग शिफ्ट हो गए, गोकुल छोड़ के बरसानी नंदगांव आ गए, राक्षस वैसे ही आ गया है शेड्यूल, मतलब कोई है ही नहीं इधर, पूरा नगर खाली हो गया। लौट के गया, महाराज कोई है ही नहीं यहाँ पर, तो सेनापति को भेजा, जाओ तुम। सेनापति गया, पत्थर बन गया, वो भी लौट के नहीं आया, खाओ बिलाओ। तो बोला मैं जाके खुद देखता हूँ, भाई क्या चमत्कार क्या है, ये मामला क्या है, खुद जाके देख के आता हूँ। तो ये आगे 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 गया, पहले गोकुल गया खाली, आगे छटिकरा गया खाली, सब खाली खाली खाली, आगे आगे उत्तर दिशा में जाता रहा जाता रहा जाता रहा, तो कुछ लोग दिखाई पड़े, वो क्या था, बरसाना। तो बरसाना आया ना, तो ये कुंड के किनारे आया काले घोड़े पर बैठकर, राधा रानी स्नान कर रही थी। राधा रानी को देखकर बड़ा नाराज हो गई, उसको देखकर, ये दुष्ट आदमी यहाँ कैसे आ गया। तो राधा रानी की केवल इच्छा मात्र से कंस जो है वो कन्या बन गया, घोड़ा भी घोड़ी बन गया। सोचो आप, कुछ नहीं किया, कुछ मंत्र नहीं बोला, कुछ तलवार नहीं निकाली, कुछ धनुष नहीं बोला, कुछ मंत्र बोलकर बाण नहीं छोड़ा, कुछ नहीं किया, खाली इच्छा किया। ये आदमी को ना दंड देना चाहिए अच्छी तरह से। तो आप सोच सकते हैं, विचार कीजिए जरा, कि मैं भी कथा कर रहा हूं, अच्छा धोती विधा पहन के आया फर्स्ट क्लास, अचानक मैं माता बन गया, हाँ कन्या बन गया, तो कैसी अवस्था होगी मेरी, हाँ समझ में आ गया मुझे क्या हो गया गड़बड़ इधर। तभी क्या है ना, बोलने को ना कुछ, मराठी में बोलते ना, सहन ही होत नहीं, सांगता ही येत नहीं, मतलब ना सहन हो रहा है ना बोल पा रहा हूँ, दोनों कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहते हैं ना कि कभी कभी दर्द ऐसे जगह पे होता है ना, तो हम बोल नहीं सकते कुछ, क्या बोले और कहाँ दर्द हो रहा है। इसको तो ऐसा दर्द हो रहा था क्योंकि बोल नहीं पाया। दिग्विजय ही कंस महाराज, इतने सारे राक्षसों को उसने वश किया था, इतना पराक्रम किया था, देवताओं को खदेड़ दिया था, इंद्र को भी परास्त कर दिया था, क्या बताएं आपको, सब ये अरिष्टासुर, ये सब केशी, ये बकासुर, ये पुतना, ये सभी प्रलंबासुर, नरकासुर, सबको गुलाम बना के रखा था। और कुलापीड़ हाथी को उठाकर फेंक दिया था, हाँ, और त्रिणावर्त को 1,00,000 योजन यानी 8,00,000 मील आकाश में फेंक दिया था। क्या वर्णन करें उसके दिग्विजय, गर्ग संहिता में पूरा 4-5 अध्याय दिए हुए हैं, उसका पराक्रम का वर्णन दिया, कितना पराक्रमी था। कहते हैं रावण तो कंस के सामने कुछ नहीं था, रावण तो शिव धनुष को हिला भी नहीं सका, और इसने विष्णु धनुष को परशुराम ने फेंका ना, तो उसको ऐसा पकड़ा, कैच किया उसने, बोलो, रखे हुए शिव धनुष को रावण टस से मस नहीं कर सका, और वो भी शिथिल हुआ था, मतलब विष्णु और विष्णु और शिव जी के युद्ध में विष्णु ने हुंकार दिया था और वो हुंकार से शिव जी का धनुष शिथिल पड़ गया था, पैरलाइज हो गया था। वो धनुष मिला था जनक राजा को और वो धनुष शिथिल हुआ था उसको रावण हिला भी नहीं सका, बोलो। और जो एक्टिव धनुष था जो विष्णु ने परशुराम को दिया था क्षत्रियों का संहार करने के लिए, ये गया, कंस गया, उसने क्या किया, महेंद्र पर्वत जहां पर परशुराम जी बैठकर ध्यान कर रहे हैं उसको 100 बार उठाया, 100 बार उठा के हिलाया। तो परशुराम जी परेशान हो गए, नीचे आए तो देखा तो तुरंत उनको परिक्रमा किया, दंडवत किया, परिक्रमा किया, प्रसन्न कर दिया उनको। परशुराम जी बड़े खुश हो गए, अरे 100 बार महेंद्र पर्वत को उठाने का ताकत किसके अंदर है, ये कंस है। तो कह रहे ओके इतने बलवान हो, ये लो इसको उठाओ तो मैं मानूंगा तुम बलवान हो। तो इसने कैच कर लिया उसको, कैच करके प्रत्यंच चढ़ा के 100 बार उसका तणत्कार किया उसने, पूरा 14 लोग हिल गए उसके आवाज से। तो परशुराम प्रसन्न हो गए, बोले बढ़िया वीरो तुम, लो तुम्हें ही रखो इस गिफ्ट के रूप में, रखो अपने पास ही रखो, लेकिन जिस दिन कोई आएगा और इसको तोड़ेगा वही तुम्हारे वध का कारण बनेगा, वही तुम्हारा वध करेगा। मतलब एक साथ में लॉलीपॉप एक साथ में कड़वी दवा दोनों दिया उनको। तो अभी मैं ये सब क्यों बताया आपको, क्योंकि कितना संकोच हो गया होगा, जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा संकोच उसको होगा। तो ये बेचारा अब क्या करो, अभी वापस जाएंगे तो बोलेंगे महाराज क्या हो गया आपको, ऐसे कैसे हो गया आपका हालत। और यहाँ पर सब लड़कियां ताली पीट रही है, अच्छा हो गया मोटल्ली गोपी, अच्छा हो गया, चलो कंडे बनाओ अभी। हाँ अरे 6 महीने तक कंडे लिपवाए उसे, बोलो रोते रोते, हाँ रोते रोते कंडे लिपवाए उसे 6 महीने तक गोपी ने तालियां पीट पीट के, अच्छो भयो अच्छो भयो, हाँ बहुत उदंड है गोए, अच्छे भयो, हाँ बिल्कुल। ऐसे गोबर निकालना, उसका कंडे बनाना, वो सुखाना, उसको पर्वत पे ऊपर इकट्ठा शाम को करना, टोकरी में डालना, टोकरी में डाल के ले जाना, और वो कंडों का एक घर होता है उसके अंदर रखना, उसको संभालना, रोज दही मंथन करना, क्या क्या काम किया उसने बेचारे ने, लेकिन रोते हुए किया। गोपिया वो सब काम करती थी रोज, हंसते हंसते करती थी, ये रोते हुए किया, कितना बड़ा भाग्य था उसको देखो। हाँ रेडीमेड गोपी बन गया था वो, हम लोग खाली प्रयास करते गोपी बनने का लेकिन बनते नहीं है, वो बेचारा वहाँ आ गया और वो भी बन गया, तो कितना खुश होना चाहिए उसको, बिना साधना किए, बिना तपस्या किए, बिना कुछ तप किए हुए, बिना कष्ट किए हुए सीधा गोपी बन गया। लेकिन देखो एक बात विचार करो कि कितना भी बड़ी कृपा होगी ना आपके ऊपर, कितनी बड़ी कृपा होगी, अगर आपकी चेतना सही नहीं है तो वो कृपा भी वेस्ट है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ओनली उसकी वैल्यू क्या है। तो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कॉन्शियसनेस। सबसे बड़ी बात जो है वो चेतना की है, चेतना श्रेष्ठ होनी चाहिए। सब लोग वीडियो ऑन करना, ये बंद वीडियो में कथा करने को मजा नहीं आता है मुझे, प्लीज पुट द वीडियो ऑन। तो चेतना अगर भ्रष्ट होगी, हमारी मति भ्रष्ट होगी, तो सबसे बड़ी कृपा भी यूजलेस हो जाती है। कृपा में कोई मतलब नहीं है, हमारी चेतना अगर सही होगी तो सब सब कृपा कृपा नजर आएगी आपको, और चेतना अगर गलत होगी, ये खराब है, वो खराब है, ये पति खराब है, ये पत्नी खराब है, ये सास खराब है, बहू खराब है, सब खराब है। चेतना सही होनी चाहिए। तो कंस के ऊपर इतनी बड़ी कृपा होने पर भी रोता रहा रोता रहा रोता रहा, 6 महीने के बाद में राधा रानी के चरणों में गिरा, बोला बचाओ मुझे, मुक्त करो, हम लोग सब लोग गोपी बनना चाहते हैं, वो गोपी बनकर मुक्त होना चाहते हैं, देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य उसका। तो राधा रानी ने फिर पिताजी ने कहा, अरे ये तो महाराज है हमारे, इसको हम टैक्स देते हैं जाके उधर, हर भाई टैक्स देते हैं, छोड़ दो इसको। तो राधा रानी ने उंगली चढ़ाई, याद रखना दोबारा आओगे तो परमानेंट कन्या बन जाओगे, अभी मेरे कुंड में स्नान करो, छलांग लगाओ, फिर पुरुष शरीर प्राप्त करोगे। तो बेचारे ने छलांग लगाए, घोड़ों को भी डुबाया उसके अंदर, वो बेचारा घोड़ा भी परेशान, मेरी पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा मथुरा जाकर, तो वो भी बेचारा डोल रहा है उधर ही। उसको भी डुबाया, खुद डूब गया, पुरुष शरीर प्राप्त हो गया, पूरा गीला कपड़ा में घोड़ा में बैठा, ऐसा भागा ऐसा भागा, मथुरा तक भागा, मुड़ तक मुड़के भी देखा नहीं, क्यों मुड़के देखा नहीं, कहीं स्वामिनी का माइंड चेंज हो गया तो, फिर इधर ही कन्या बन के रहना पड़ेगा, उधर सिंहासन खाली हो जाएगा, महाराज कहाँ गए, गायब हो गए महाराज, महाराज आए नहीं इधर, और जो थे भी वो बदल गए पूरे प्रजा परेशान, राजा परेशान, सब परेशान। ऐसा है ये महाप्रतापी राजा रानी का, ये पता है कथा गर्ग संहिता में आई है, अभी आपको बताना जरूरी है कि कथा कहाँ पर आई है। ये कथा कहाँ पर आई है, भगवान ने ये गिरिराज को उठाया है ना, पर्वत को उठाया, और उसकी रोज शाम को कथा होती है ना, उधर चौरासे खंबा किसके लिए बनाया है, उधर बैठना है और आज का क्या समाचार है वो चर्चा करनी है भगवान के विषय में, रोज भगवान ने क्या क्या किया उसका डिस्कशन होता है, उसका परपोर्ट देते हैं, उसका आनंद लेते हैं वो सब लोग, चौरासी खंबा नाम है उसका। तो इकट्ठा हो गए सब लोग 7 दिन के बाद, बहुत दिन मीटिंग नहीं हुई ना, एक दिन सब पर्वत के अंदर थे 7 दिन, तो कैसे मीटिंग होगी तो पर्वत के बाद में मीटिंग हुआ। तो बोले अरे तुम्हारा बालक, अरे नंद नंद तुम्हारा बालक बहुत अजीब बालक है, शायद देवता होगा, देवता। बोले नहीं नहीं ऋषि हुआ, नहीं नहीं सिद्ध बाबा होगा, कोई कोई देवता होगा, कोई मुनि होगा। तो सब बात को काट देते, बोले कैसा देवता, हाँ जरा भूख लगी तो फिर जाके किसी घर में पेशाब करता है, किसी के कान में पानी डालता है, किसी को चिमटा निकालता है, हाँ मक्खन चोरी करके खाता है, कोई देवता के लक्षण है इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है, भावना पे नियंत्रण नहीं है, चोरी करता है, कोई मर्यादा नहीं है, ये कैसा देवता हो सकता है। ऐसे करके हर एक बात को नंद बाबा ने काट दिया। चलो बता सही, तू बता तो सही, क्या रहस्य क्या है, इतना बल कहाँ से आया। अरे नंद तू तो एक एक छोटी सी पत्थर की शिला भी नहीं उठा सकता है, और तुम्हारा बालक इतना बड़ा पर्वत 7 दिन तक उठाए रखा, क्या रहस्य क्या बताओ। तो ब्रजवासी तो नंद बाबा ने झट से बोल दिया, खुशी में था, बहुत आनंद में थे, क्या बोल दिया, हाँ गर्ग मुनि आए थे, उन्होंने बताया था कि आगे जाके पर्वत को उठाएगा, नाम गिरधारी पड़ेगा उसका। क्या क्या बता रहे हो, गर्ग मुनि कब आए थे। अरे रहस्य की बात फोड़ दी ना, तो गुप्त रूप में आए थे वो, एकदम चुपचाप में सीक्रेट में नामकरण विधि किया था उसका, अब किसको पता नहीं था, अभी बात बात में फूट गया भांडा पूरा। तो अभी हंसी मजाक का वातावरण था, तो गुस्से का वातावरण आ गया, क्या बात कर रहे हो, हमें अपनी बिरादरी के बोलते हो और हमको बताया तक नहीं, इनका नामकरण किया, गर्ग मुनि आए, इतना बड़ा हुआ काम हो, तुमने हमको बताया भी नहीं, हम तुमको हमारे कम्युनिटी से बरी कर देते हैं, ट्रस्टिगेट कर देते हैं, हमारे कम्युनिटी में चाहिए नहीं आप, ग्वाल बालों के कम्युनिटी में आप कलंक हो। मामला बिगड़ गया ना, अभी अच्छा अच्छा मामला था, सब बढ़िया से बैठ के बात कर रहे थे, क्रोध में आ गए, वो क्या कहते हैं ना, अपनी कम्युनिटी से बाहर करने की बात कर रहे हैं। तो बृषभानु बाबा उठ गए, अरे बाबा सब समझो यार, तुम लोग समझो, इतना दिमाग खराब मत करो, अरे उस समय विकट प्रसंग था, कंस का भय था, गर्ग मुनि को वसुदेव ने भेजा था संदेश देकर, समझा बुझा के भाई गुप्त रूप में करना है, क्योंकि मेरे कुल पुरोहित हो, किसी का नामकरण करोगे तो कंस को डाउट आएगा कि इसके ही बालकों को नामकरण करने के लिए गया था उधर, वो बालक को वहां छुपा के रखा है उन्होंने, तो ये बात फुटनी नहीं चाहिए, इसलिए गुप्त रूप में गौशाला में केवल नंद बाबा, यशोदा, रोहिणी, कृष्ण और गर्ग मुनि, बस और कोई नहीं, 5वां आदमी, वो हम कछु नहीं जाने, और तुम इसका पक्ष लेते हो, इसको भी निकाल दो। देखो कहां तक बात पहुंच गई, नंद बाबा को निकाल दो, वृषभानु को भी निकाल दो। लेकिन जब वृषभानु को निकालने की बात हुई ना, तो एक ग्रुप खड़ा हो गया ब्रजवासियों का, बोलता अरे वृषभानु बाबा को निकालने की बात मत करना, इसकी कन्या पता है आपको, बहुत महाप्रतापी कन्या है, उसकी वजह से कंस यहां पर प्रवेश नहीं कर सकता है। अरे वो कैसे, तो ये कहानी बताई ब्रजवासियों ने, ऐसे ऐसे भानुघर में आया था काले घोड़े बैठकर, 6 महीना कन्या बन के रहा इधर, पता है आपको, और तुम इसको निकालने की बात कर रहे हो, इसको निकालोगे तो तुरंत कंस आ जाएगा तुम्हारे सर पर बैठने के लिए। अरे हाँ हाँ ठीक है महाराज जी, बहुत धन्यवाद, बहुत। इसको कहते हैं विस्मय कथा, ये उसका नाम है विस्मय कथा, क्योंकि विस्मय चकित होकर सब लोग ये वर्णन कर रहे थे कि कैसे कृष्ण ने पर्वत को उठाया। ऐसा है, तो यही वो किंड है भानुघर, जहां पर वृषभानु महाराज अपनी पत्नी को लेकर हवा खाने आते हैं, राधा रानी स्नान करती है, और कंस को कन्या बना दिया था। हाँ तो प्रणाम करना इसको, महाप्रतापी रानी, महारानी राधा रानी को प्रणाम करना, इसके बल से यहाँ पर कोई कंस वाला प्रवेश नहीं करता है, बड़े प्रेम की लीला होती है यहाँ पर। और राधा रानी स्नान भी करती है, तब कृष्ण आते हैं नंदगांव से और पूछते हैं कौन की लाली है ये, तभी बोलना है ना, सिंपल उत्तर है वृषभानु की लाली है, वहां में कहा है। तो ललिता जी क्या बोलती है, तुम्हें क्या करना है, तुमको नंदगांव वालों को कुछ मर्यादा बर्यादा है कुछ? कहीं भी आते हैं पूछते हैं कौन की लाली है, तुम्हें क्या कर रहे हैं, चलो अपना काम करो। ऐसा फटकार देती है कृष्ण को। बेचारा कृष्ण तो एकदम क्या बोलते ना, इनोसेंटली पूछ रहे थे भाई किसकी लड़की है। ललिता ने ऐसा फटकार दिया ना, तो बेचारा कृष्ण एकदम सहमा गया पूरा। तो राधा रानी को अच्छा नहीं लगा कि पूछ रहा है तो उसका जवाब दो, उसमें क्या है, इतनी फटकारने की जरूरत क्या है इतनी तेज वाणी में, जा मैं तुमसे बात नहीं करती करके अपनी चार सखियों को लेकर अलग गई और अलग से एक साइड में पानी में स्नान करने लगी, सखियां अलग रह गई। ये सब बात देखकर कृष्ण ने क्या किया, तुरंत डाइव मारा पानी में, डाइव मारा अंडर वाटर गए, अंडर वाटर जाके राधा रानी के पैरों को छुआ, तो वो डर लगा, अरे क्यों पैर छू रहा है पानी के अंदर, कछुआ आया क्या कौन आया, तो पैर को छुआ और सखियों के बीच में प्रकट हो गए, ऐसे वापस पानी में गए और गायब हो गए। ये भानुकर की लीला है। हाँ भानुकर को प्रणाम करो, देखो बहुत सुंदर कुंड है ये, अद्भुत कुंड है, और इसके लिए प्रार्थना करते हैं जरा भानु कुंड के लिए। क्या लिखा है, निर्धूत किल विषैव गोपराज कृतायते वृषभानु महाराज कृताय सरसे नमः। ये जो कुंड है ना, ये सारे पापों को नष्ट कर देता है। वृषभानु महाराज ने इसको निर्माण किया है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। फिर आगे चलते हैं, एक बहुत सुंदर स्थान आएगा, वो खेत में है। हाँ हम लोग आपको ऐसे ऐसे अंदर गली में ले जाएंगे और ऐसे स्थान दिखाएंगे आपको, मजा आएगा आपको देखकर। देखो खेत के अंदर ये अच्छा मंदिर बना हुआ है, और ये है ब्रजेश्वर महादेव। ये हमारे वृषभानु महाराज का तपस्या स्थली है। ये राबड़ वन में आता है, राबड़ या पाड़र वन में आता है, दो वन है इधर। देखो ये वृषभानु महाराज यहाँ पर तपस्या करते थे राधा रानी की सुरक्षा के लिए, प्राप्ति के लिए। तो इसकी कहानी ऐसी है कि कहानी सिंपल है कि वृषभानु महाराज ने यहाँ तप किया था। बहुत उत्कट स्थली है, एकांत स्थली है, जंगल में है, बहुत सुंदर। और अभी अभी 50 साल पहले, ये तो खेत में है ना, तो किसी किसान का खेत है, ब्रजवासी का, तो खेती कर रहा है, तो उसका जो हल है ना वो एक जगह अटकता था, हर समय पे घूम के आता था तो इधर अटकता था। तो उसने देखा क्या है भाई, तो उसको शिवलिंग मिला। तो उसने बोला अरे तो खेत में शिवलिंग अभी प्रकट हो गया है, तो उसको कहीं मंदिर में रखना चाहिए बढ़िया से, तो खेत में कौन आएगा दर्शन करने के लिए। तो उसने पूछा कि खोदूंगा उसको मैं, खोद के फिर निकालूंगा, और निकाल के फिर कहीं अच्छा मंदिर बनाऊंगा, लोग आके दर्शन करेंगे। तो बेचारे ने दिन भर खोदा, जितना खोदा उतना नीचे है, जितना खोदा उतना नीचे है, परेशान हो गया वो। शाम को भी बोला अभी ठीक है, अभी आज थोड़ा रोक लेते हैं, कल वापस खोदते हैं। शाम को बंद किया और घर में जाके सो गया। तो क्या हुआ, सपने में भोले बाबा आए, बोले मैं ब्रजेश्वर महादेव हूं, तुम्हारे खेत में बसा हूं, ये मेरी लीला स्थली है, यहाँ पर मेरे भाग्य है कि यहाँ पर वृषभानु बाबा ने तपस्या किया था, मैं इस जगह को छोड़ के जा नहीं सकता। तुम पाताल तक भी खोदोगे ना तो मेरा अंत नहीं मिलेगा आपको, ऐसा बताया। धाड़ से दिन से उठाओ, आके प्रणाम किया इधर खेत में आके। बाद में खेत में ही मंदिर बनाया, ऐसा है ये। देखो आप वापस देख लो किधर है मंदिर उसका, खेत में है कि नहीं। हाँ इधर पूरा बड़ी शेप है इधर, बहुत जड़ी बूटी का खेत है बहुत, इधर बहुत सुंदर। और इस मंदिर के पास में आओगे ना, इधर गुलेर का पेड़ है, उदुम्बर, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, कदम का पेड़ है, तमाल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, बहुत अद्भुत पेड़ है यहाँ पर, बहुत इसके आसपास बहुत पवित्र वातावरण है, बहुत सुंदर। और ये उस वन में है जिसका नाम है पाड़र वन, जिसमें राधा रानी सांझी लीला के लिए फूल बिनने के लिए आया करती थी। एक कुसुम वन वहां पर जाती थी, एक पाड़र वन में आती थी। और आगे लिखा है राबड़ वन, ये राबड़ वन भी इसके अंदर आता है। तो राबड़ वन में गोपियों ने कृष्ण को रबड़ी खिलाई थी, इसलिए उसका नाम पड़ा राबड़ वन। यहाँ पर कृष्ण ने मुरली बजाई एक बार, तो आकाश में बादल आ गए और वारी बिंदु गिरने लगे हल्के हल्के, तो मोर आ गए वहां से, तो मोर बड़े प्रेरित हो गए ना, बादल भी आ रहे हैं, बूंद भी गिर रही है, मुरली बज रही है, तो इनको देखकर और मुरली बजने लगी जोर जोर से। तो बहुत जोर से वर्षा हुई और कृष्ण का पीताम्बर भीग गया, सब वस्त्र भीग गए, मुरली भी भीग गई, ठीक है, फिर भी मुरली बज रही थी, फिर भी बज रही थी, फिर भी बज रही थी। तो गोपियां आती है वहां से, देखती है अरे इतनी वर्षा हो रही है, इतने वस्त्र गीले हो गए, ये खुद भी गीली हो गई लेकिन छोड़ती नहीं बजना। हाँ, कृष्ण के होंठों को लगी हुई है, उसका अमृत पान कर रही है और छोड़ नहीं रही है। हाँ, कितनी भाग्यवान है ये। तो ये लीला भी इधर इनके सामने हुई है। रावण वन, प्रणाम कीजिए विश्वानु महाराज को, बजेश्वर महादेव को। हाँ, बड़े अद्भुत स्थान है ये लीला स्थली बरसाने की। और जो आपको मैंने दिखाया ना वो भानुकर, तो ब्रजवासी लोगों का कैसा होता है व्रत, हम लोग कैसे अभी चतुर्मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, व्रत करते ना, तो ब्रजवासी क्या व्रत रखते हैं, भानुकर का जल लोटा में लेकर 2-3 किलोमीटर चल के ब्रजेश्वर महादेव जाना है और वो शिवजी पे चढ़ाना है। बड़ा महात्म्य है उसका, बड़ा महात्म्य। ब्रजेश्वराय ते तुभ्यम मथुर महारुद्राय ते नमः, ब्रज उकसाम शिवार्थाय नमस्ते शिव रूपिणे। हे ब्रजेश्वर महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप सब ब्रजवासियों के लिए बहुत पवित्र हो। प्रेम प्रेम सरोवर आते हैं। हाँ, अभी ये इतना अद्भुत कुंड है, इतना अद्भुत कुंड है। यहाँ पर प्रेम वन था, मतलब प्रेम वन के अंदर प्रेम सरोवर है। इस प्रेम वन के अंदर राधा कृष्ण का प्रथम मिलन हुआ था। कभी एक बार बचपन में, वो जन्म के समय हुआ था, जब कृष्ण आए थे, वो स्पर्श किया था, तो वो आंखें खोली थी, वो तो बालक थे थोड़े। जब थोड़े से शिफ्ट हो गए ना, इधर से नंदगांव बरसाना आए, तो तब थोड़े बड़े हो गए थे ना, तो पहली बार घूमते घूमते सुना था कि कोई सुंदर लड़की है बरसाने में, तो देखने के लिए घूमते घूमते आए थे श्याम सुंदर जी सज धज के, और ये लड़कियां वहां पर आग मिचौली खेल रही थी, वेरी स्मॉल गर्ल्स, तो उधर आँख मिचौली खेल रही थी, तो किसी को पट्टी बांधना है और गोल घुमाना है और छोड़ देना है, बाकी सबको छुपना है जाके। तो किसी को पट्टी बांधा और घुमाया, और राधा रानी बराबर उसी कुंज में आई जिसमें ये बैठा हुआ है। तो राधा रानी वहाँ पर आई तो देखा नीला कोई बालक, इतना सुंदर बालक बैठा हुआ है, मुरली बजा रहा है, तो एकदम मोहित हो गई राधा रानी। और राधा रानी कुछ करे कि इसके पहले ही बालक बेहोश हो गया, क्योंकि उसको इतना राधा रानी का रूप देखकर इतना प्रेम आया, तो प्रेम से विवल हो गया, वो बेहोश हो गया। तो राधा रानी सोच रही थी, अरे बेचारा बालक बेहोश हो गया, कुछ करना चाहिए, जल छिड़कना चाहिए, कुछ करना चाहिए। उतने में आवाज आई, राधे पकड़ी गई, चलो चलो आ जाओ। तो वो भी दुविधा में आ गए कि क्या करूं, उसको भी संवारूं कि उसको जाऊं। वापस ललिता की आवाज आई, ललिता बोल रही, राधा रानी चलो चलो, अभी दूसरे को पट्टी बांधना है। तो वो दुविधा में वो छोड़ के चली गई उसको। लेकिन जब छोड़ के चली गई ना, तो बड़ी उदास हो गई। तो फिर ये बाद में होश में आ गए और देखा तो वन में कोई नहीं है, लड़की नहीं है, कोई नहीं है। ये उदास हो गए, घर पे चले गए, ना ये माखन खा रहे हैं वो यहाँ, ना वो खेल रही है। तो वृषभानु मैया, वृषभानु की पत्नी कीर्ति मैया परेशान, नंद की पत्नी यशोदा भी परेशान, दोनों के घर में बालक कुछ खावे ना है, पीवे ना है, कछु खेले ना है, कछु ना करें। तो फिर ललिता जी ने, फिर बहुत लंबी कथा है, ललिता जी ने दोनों का उपाय किया, दोनों को बहुत गुप्त रूप से मिलाया, ललिता कुंड में नहलाया, पैनावली में दूल्हा बनाया, कजरोठा में काजल कुंड के पास काजल लगाया, और छुपके से प्रेम वन में आके मिलाया, और सखियों के भेजा, इसको तैयार किया, उसको भी लेके आया सज धज के, और इस कुंड पे ललिता ने राधा कृष्ण का पहला मिलन किया है। पहला मिलन तो अपने आप हुआ था बेहोशी का, फिर ऑफिशियल मिलन भी यहाँ पर कराया है। बाद में इसके किनारे पे बैठे थे, एक दूसरे की आंखों को देखते हुए बीच में भंवरा आ गया, तो भंग हो गया ध्यान ना उनका। तो कृष्ण ने कहा मधुमंगल को, देखो कृष्ण का नाम भी मधु है, मधुमंगल का नाम भी मधु है, और भंवरे को भी मधु कहते हैं, है ना। तो कृष्ण कैसे बोलते हैं, अरे मधु, मधु को हटा दे। तो मधुमंगल आया, मधु को हटा दिया उसने, भंवरे को हटा दिया, और मधुमंगल ने कहा मधु चला गया। तो राधा क्या सुनती है, मधु चला गया, मतलब कृष्ण चला गया, सामने बैठे हैं लेकिन अभी जाएगा, पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन गया, ये सोचकर रोने लगी। तो उनको रोते हुए देखकर कृष्ण भी रोने लगे। और ट्रेन में कैसा था पता है आपको, ट्रेन में हम लोग बैठे बात करते हैं, बाद में कोई रोता है तो उसको देख के हम भी रोते हैं, है ना, ये ऐसा रोने का रोग ऐसा ही है, कोई रोएगा तो हम भी रोते हैं, अपना कोई लगता नहीं वो, लेकिन हमको रोना आता है। यहाँ तो प्रियतम रो रहा है, तो वो भी रोने लगे, ये भी रोने लगी, दोनों के रोने से ये प्रेम सरोवर बना। कैसे बना मुझे मत पूछना, मुझे पता नहीं है। आप बोलेंगे आप डॉक्टर हो, इतना आंसू कहाँ से आते हैं, ये सब पता नहीं हमको, हाँ ये सब ठाकुर जी की लीला है, इसमें ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए। देखो प्रेम सरोवर का दर्शन करो बड़े प्रेम से, हाँ प्रेम के आंसुओं से बना हुआ कुंड है ये, साधारण कुंड नहीं है, दिव्य कुंड है बहुत। इसको आचमन करिए, इसमें स्नान कीजिए, इसमें प्रेम दान की याचना कीजिए, हाँ कैसा प्रेम हमें भी आ जाए। अरे हमारे कभी आंसू निकलते मालूम है ना, कि पैसा कोई चोरी करके लेके गया, कोई मर गया घर पे, कोई घर पे आग लग गई, कुछ हो गया, फेल हो गया एग्जाम में, कि लड़की ने ना बोल दिया, हो हाँ नहीं बोला ना बोल दिया, तो मैं अभी जीऊँगा नहीं, मर जाऊँगा, आंसू बहाऊँगा, ऐसा सब हमारे आंसू ऐसे फालतू में गिरते हैं हमेशा, किसी बकवास कारण के लिए हमारे आंसू बहते रहते हैं। ये देखिए इसे बोलते हैं अश्रु, हाँ प्रेम के अश्रु। तो यहाँ पर भिक्षा मांगो प्रेम की, कि आंसू निकलना है तो प्रेम से निकलने दो, बाकी कोई मर गया, कोई पैसा गया, कोई शरीर छूट गया, तो क्या रोना है उसके अंदर। हाँ गता सुन गता शुमश नानु शोचन थी पंडित, भगवान अर्जुन को बताते हैं मूर्ख हो तुम, जीते रहे मरने के लिए रोते हो, ये पंडित का लक्षण नहीं है। पंडित तो वो होता है गता अगता सुना नानु शोचन थी पंडित, पंडित तो वो है वो ऐसा रोता नहीं कभी, वो केवल भगवान के लिए रोता है, भगवान की याद में रोता है, भगवान के लिए रोता है। प्रार्थना कीजिए यहाँ पर हाथ जोड़कर कि हम आपका प्रेम चाहते हैं हरे कृष्णा, और प्रेम से दर्शन कीजिए प्रेम सरोवर का। यहाँ पर प्रेम बिहारी जी का मंदिर भी है, पीछे जो मंदिर है ना वो प्रेम बिहारी जी का मंदिर है, राधा प्रेम बिहारी जी। देखिए अभी प्रार्थना करते हैं मंत्र बोलकर, थोड़ा ही समय बाकी है अभी। ललिता प्रेम संभूते प्रेमरव्य प्रेमरव्य सरसे नमः, प्रेम प्रदाय तीर्थाय कौटिल्य प्रदप नाशक। इसका एक विशेष गुण है, इस कुंड में स्नान करने से मन की कुटिलता नष्ट हो जाती है। व्हाट इज कुटिलता? क्रूकेडनेस, कपटी, कपटी स्वभाव होता है ना, एकदम दुष्ट स्वभाव होता है, वो दुष्ट स्वभाव यहाँ पर नष्ट होता है इसमें स्नान करने से, ऐसा लिखा है। हे प्रेम सरोवर जो ललिता और कृष्ण के प्रेम से, राधा कृष्ण के प्रेम से बना हुआ है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और आप जो कपटी स्वभाव को नष्ट करने वाले हो। अब ये आखिरी सरोवर है, कभी देखा नहीं होगा आपने, इसको प्रेम विवल कुंड कहते हैं। ये प्रेम विवल कुंड कैसा है, यहाँ पर कृष्ण भगवान देवी बने थे और राधा रानी उनकी पूजा कर रही थी शुक्रवार के दिन, तो देवी को रहा नहीं गया, देवी ने आंख मीच दिया पूजा होते होते, और स्माइल दे दिया बीच में, तो राधा रानी बड़े अचंभित हो गए, अरे देवी हंस गई कैसे, देवी कैसे हंस गई, तो उसमें से उसमें अचंभित भाव में आंसू आ गए आंखों से, कह रहे कृष्ण देखो कैसे मिल गए आज, कैसे छुपके से मिले, देवी बनकर मिले। तो राधा रानी को अचंभित होकर रोते हुए देखकर कृष्ण भी रोने लगे। तो ये भी दोनों के आंसुओं से बना हुआ है, लेकिन इसका नाम प्रेम विवल कुंड है, और जो देवी बनी थी ना कृष्ण, उसका नाम है विवला देवी, वो वहां पर खड़ी है आज भी, वो देवी नहीं है, वो स्वयं कृष्ण खड़े हैं, छद्म करके खड़े हैं। तो प्रेम विवल कुंड को भी प्रणाम कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहीं पे हमारी आज की बरसाने की परिक्रमा समाप्त होती है प्रेम विवल कुंड पे। वैसा बरसाना तो अनंत धाम है, अनंत कथाएं हैं, अनंत लीलाएं हैं, अनंत स्थान हैं, कभी हम जाएंगे टाइम निकाल के तो सब बता देंगे आपको। अभी यहाँ पर हम कथा को विराम देते हैं।